السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. उम्मीद है कि कल की बातों पर आपने गौर किया होगा और कुछ देर सोच विचार में लगाई होगी। अगर हम अपनी ज़िंदगी में ये जानना चाहते हैं कि मरने के बाद हमारा क्या होगा, तो फिर सोच लें कि कौन सी चीज़ है जो मेरी कब्र में मेरी ज़रूरत होगी, जो वहाँ काम आएगी, बस उसे ज्यादा कर लें। और हम सब जानते हैं कि वो सिवाय नेक अमल के और कुछ नहीं, क्योंकि कब्र में तवील अरसा इंसान को गुजारना होगा और वहाँ पे दुनिया की किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ना खाने पीने की, ना कपड़ों की, ना हार सिंगार की, ना जेवरात की, ना पैसों की, ना जमीनों जायदादों की, ना लेटेस्ट फैशन की, बल्कि उस सामान की जिसके लिए आजकल हम कोशिश में लगे हुए हैं कि उसी को ज्यादा करें। बाकी जितनी भी चीजें हैं, जहां पे भी वक्त गुजरता है नेक आमाल के अलावा, वो तो सिवाय हसरत के और कुछ नहीं होंगे। अब अपने मौजूदा हाल पे जरा नजर डालने। अगर तो मेरा हाल ऐसा है कि कब्र के काबिल है, तो उसी पे कायम रहें, और अगर ये हाल ऐसा नहीं है तो इसको दुरुस्त करें, अल्लाह ताला की तरफ पलटें और कोशिश करें उन कामों में अपना वक्त लगाएं जो मेरी कब्र में काम आने वाले हैं। एक तहरीर आपको सुनाना चाहूंगी जो डॉक्टर मुस्तफ़ा महमूद लिखते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ जो मेरे लिए बहुत काम आया और जिससे मैंने अपना ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत किया और कब्र के घर के लिए कोशिश की। कहते हैं, मैंने सोचा कि मेरी उम्र कितनी हो गई है, अपनी उम्र का सोच के फिर मैंने सोचा कि जब मैं कब्र में जाऊंगा तो वहां तो मैं अकेला हूंगा और मुझे वहां पे लंबा अरसा रहना है, तो वहां मैं करूंगा क्या। इसके बाद मैंने सोचना शुरू किया कि कौन से आमाल मुझे वहां पे काम आएंगे। एक खाली कब्र में, तारीख कब्र में, तो जाहिर है उसको सामान की जरूरत होगी। लिहाजा मैंने इस्तिग़फ़ार को ये सोच के करना शुरू किया कि मैं इसको अपनी कब्र के लिए भेज रहा हूँ, ये मेरा वहाँ का सामान बन रहा है, ताकि ये इस्तिग़फ़ार वहाँ पर मेरा इंतज़ार करे और मेरी तन्हाई की साथी बने। कहते, फिर मैंने अपनी कब्र को और डेकोरेट करने के लिए अमल शुरू किए कि कब्र के एक कोने में मैं तस्बीहात भर लेता हूँ, हजारों तस्बीहात, और मेरे सर के करीब कम अज कम 300-400 कुरान तो होने चाहिए जो मेरे लिए आरामदेह बिस्तर का सबब बने। तो कहते हैं, हर रकू में मैं ये तसव्वुर करता था कि मैं इसको कब्र के लिए आगे भेजता जा रहा हूँ, फिर हर कोई मुझे छोड़ के अपने घरों को चला जाएगा, मैं अकेला रह जाऊंगा शायद हजारों साल तक, मेरे बच्चे भी चंद साल बाद मुझे भूल जाएंगे, लिहाजा मुझे कब्र में साथियों की भी ज़रूरत होगी और रोशनी का भी, वहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है तो रोशनियों की भी ज़रूरत होगी और जन्नत के जैसे मनाजिर की भी ज़रूरत होगी। तो मैंने सदका करना शुरू किया और जो मैं जिक्र करता और जो कुरान पढ़ता और जो नमाज पढ़ता और जो तस्बीहात करता, उसमें भी साथ साथ ये सोचता जाता कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे साथ हंसने बोलने वाले होंगे, ये मेरे वहाँ के साथी होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता, और ये मैंने एक मामूल बना लिया था कि वहाँ पर जब मैं कयामत के दिन हशर के मैदान में हूँगा तो वहाँ पे ये अपने हौज से मुझे पानी देंगे, तो ये मैं इसलिए दुरूद पढ़ रहा हूँ। और कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कब्र की जिंदगी इस दुनिया की जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत जिंदगी हो। तो मैंने सोचा कि क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं वहां जाकर गीबत, चुगली, हसद और दूसरे गुनाहों की वजह से बदबूदार कपड़ों, दीमक लगे फर्नीचर और सख्त पथरीले बिस्तर की बजाय अपनी कब्र को बेहतरीन चीजों से आरास्ता करूं। तो मैंने दुनिया में अपना घर बनाने के लिए सारी जिंदगी जो मेहनत की, मैंने सोचा मैं इससे ज्यादा मेहनत अपने उस घर के लिए करूंगा। ये घर तो मेरे वारसों का हो जाएगा। असल में तो सारी मेहनत मैंने उनके लिए की है, अपने लिए क्या किया? सारे फायदे तो मैं लोगों के लिए छोड़ जाऊंगा। तो मैंने सोच लिया कि बस बहुत हो गया, मुझे वो अपना घर ज्यादा बेहतर बनाना है जहां पे सिर्फ मैं हूंगा और मुझे एक लंबा अरसा गुजारना है। अगर मेरे तमाम आमाल दुनिया की जरूरियात के लिए थे और कब्र के लिए कुछ भी नहीं था, तो फिर तो मेरे कब्र वाले घर के लिए सिवाय अजाब के फर्नीचर, मुस्तकिल अंधेरे और सख्त अजाब के कुछ भी ना होगा, और मैं ऐसे घर में अकेला कैसे रहूंगा। फिर उन्होंने नसीहत की है कि मेरी एक नसीहत आज से पल्ले बांध ले, अपनी कब्र को अपना बैंक अकाउंट बनाए और उसमें ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट करें, अपनी इबादत का ख्याल करें, जब कब्र में होंगे तो यही काम आएंगी। अपने कब्र के घर को इस दुनिया के घर से ज्यादा आरामदेह बनाने की कोशिश करें। आज तो तुम अपने घर वालों के दरमियान हो, खा पी रहे हो, आराम से सो रहे हो और तुम्हारी सारी जरूरियात तुम्हें मुयस्सर है, फिर भी तुम अपने हालात से तंग रहते हो, हर वक्त कोई ना कोई शिकायत करते रहते हो। तो सोचो जब तुम जमीन के नीचे चले जाओगे और सैकड़ों हजारों सालों के लिए होगे, तो वहां तुम्हारे साथ कौन होगा? तुम्हारे पसंदीदा सियासतदान, खिलाड़ी, अदाकार, ताजिर, एक्टर, सब एक्ट्रेसेस, ये तो तुम्हें वहां जानते भी ना होंगे, ना ही उन्हें तुम्हारी फिक्र होगी। फिर तुम उनके पीछे अपना वक्त क्यों जाया करते हो? तुम्हारे वो बच्चे जिनकी शादियों पर तुमने लाखों रुपए फजूलियात पे खर्च कर दिए, ये खर्च तुम्हारे लिए सिवाय वबाल के और कुछ नहीं होगा। बच्चे इनकार कर देंगे कि हमारे माँ बाप ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, ये तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। इसलिए आज से अपनी जान की फिक्र करो, अपना ख्याल खुद करो। तो ये उनकी नसीहत है और बड़ी प्यारी बात थी, इसलिए आपके साथ शेयर की। वाकई इंसान की जिंदगी में देखा जाए तो अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा के देख लें, अपने घरों में कौन सी चीज है जो हमारे साथ जाएगी, और इसी से हम जान सकते हैं कि हमारी कब्र का हाल, उसका माहौल कैसा होगा। जाहिर है जो चीज यहां से भेजेंगे वही वहां पे मौजूद होगी, जो चीज भेजेंगे नहीं, यहीं के लिए रख ली, तो वो यहाँ पे तो आज काम आ रही है, आराम दे रही है, मगर वो हजारों साल की जिंदगी में कैसे फायदामंद हो सकती है। फिर ये कि यहाँ पे तो हमें कुछ चाहिए होता है तो हम जाके बाजार से ले आते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, वहां पे कुछ चाहिए होगा, कुछ आरामदेह चीजें, कुछ हाँ ऐसा सामान जो वहां के लिए काम आने वाला हो, तो किसको ऑर्डर करेंगे? कौन सा अमेज़न होगा और कौन सा बाजार होगा जहां से जाके ले आएंगे? फिर भी हमें यहाँ की फिक्र कितनी ज्यादा होती है और वहां की फिक्र कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला हमें वहां की फिक्रात लगा दे कि हम वाकई उधर की फिक्र करने वाले हो जाएं। आज देखते हैं अल्लाह ताला का जो नाम हमारे सामने है, वो है अल अलीम। अल अलीम इल्म वाला। एक होता है आलिम और एक है अलीम। अलीम में मुबालगा है, आलिम इल्म वाला, मगर हो सकता है उसका इल्म हमेशा का नहीं है और मुकम्मल भी नहीं है। लेकिन अलीम वो है कि बहुत ज्यादा इल्म वाला, एग्जेजुरेशन है इसमें, ऐसा इल्म कि जो हर चीज का अहाता किए हुए, वो जाहिर का भी इल्म रखता है और बातिन का भी। सूरह क़ाफ़ में अल्लाह ताला ने फरमाया, वलकद खलकनल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु। हमने इंसान को पैदा किया, हमें पता है जो इसके नफ्स में भी, इसके दिल में भी वसवसे उठते हैं ना, वो भी हम जानते हैं। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और हम तो इसकी जगलर वेन से, इसकी शाहरग से भी ज़्यादा करीब हैं। यानी अल्लाह ताला अपने इल्म के लिहाज से इतना करीब है इंसान से कि उसके दिल में ख्याल बाद में आता है, अल्लाह ताला को पहले पता होता है। काफिर कहते थे ना कि जब मर के मट्टी हो जाएंगे तो कैसे उठाए जाएंगे, अल्लाह ताला ने इसी सूरह में फरमाया, सूरह काफ में, कद आलिमना मा तनकुसुल अर्दु मिनहुम वइंदना किताबुन हफीज। हमें तो ये भी पता है कि जमीन में किस चीज ने उनके अंदर क्या कमी की, कौन सा हिस्सा उनका खा लिया, किस जगह किसके जिस्म का कौन सा हिस्सा डीकम्पोज होके पड़ा होता है, अल्लाह ताला वो भी जानता है। कहाँ तुम्हारे गाल, कहाँ तुम्हारी आंखें, कहाँ तुम्हारे बाल, हाथ पैर चेहरा, किधर जमीन के किस हिस्से में जाके खत्म हुए हैं और मिट्टी बन गए हैं, और वो मिट्टी उड़ के उसके जर्रात किधर किधर पहुंच गए, किसकी दीवार में चुने गए, किसने कोई बर्तन उससे बना लिया, किसके पैरों के साथ लग के वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक चले गए, हवाओं ने उड़ा के किस जर्रे को समंदर में डाल दिया और कौन सा जर्रा कहीं और पहुंच गया, तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है किस जर्रे को किसी जानवर ने खा लिया और उसके पेट में चला गया, तुम्हारे हाथ पैर मट्टी बन के किस जर्रे में तब्दील हुए और वो जर्रा किधर किधर पड़ा हुआ, वो आंखें किस तरह मट्टी बन गई और मट्टी के वो जर्रे किस किस जगह उड़ के पहुंच गए। वो उसके पास एक ऐसी किताब में है जिसमें सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है, वइंदहु मफातिहुल गैब ला यालमहु इल्ला हु। वो गैब की कुंजियां अपने पास रखता है, उसके पास है गैब की कुंजियां, यानी गैब को वो जानता है, कोई पत्ता नहीं गिरता मगर आगे आया कि वो जानता है। सूरह नाम में है, अभी तक इंसान कोई ऐसा डिवाइस नहीं बना सका जिससे उसको ये पता चल सके कि किसी एक मुल्क में भी कितने पत्ते गिर रहे हैं, किस वक्त गिर रहे हैं, कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं, और वो जब से दुनिया बनी कौन सा पत्ता किस जगह गिरा वो उसको जानता है। ये क्यों बताया गया, पत्ते का क्यों बताया, इसलिए कि इतनी इनसिग्निफिकेंट चीज है, इतनी यानी छोटी सी चीज है जिसका इंसान सोचता तक नहीं है, उस चीज का भी वो जानता है, कौन सा पत्ता कब गिरना है, कौन सा गिर रहा है, कौन सा कब जमीन पे पहुंचा है, कितने पत्ते आज गिरे, कितने पत्ते दिन में गिरे, कितने रात में गिरे, कौन से दरख्त से गिरे, पूरी दुनिया में जितने पत्ते गिर रहे हैं वो उसका भी इल्म रखता है। तो फिर और चीजें जो ज्यादा जिनको हम कहें इंपॉर्टेंट है या कुछ, उनका इल्म कितना होगा, जो इतना छोटी सी चीज का भी इल्म रखता है, वो बंद दरवाजों के पीछे या तन्हाइयों में रातों में हुई हुई बातों को नहीं जानता होगा, वो जानता है जो बहरों बर में है, समंदरों में भी है और खुश्की में भी, और इसी आयत में है, वो खुश्क और तर का इल्म रखता है, उसको इल्म है जो प्राइवेट में तुम करते हो और जो पब्लिक में करते हो। अलम तारा अन्नल्लाह यालमु मा फिस समावाती व मा फिल अर्द। तुम्हें नहीं पता, अल्लाह ताला जानता है जो आसमानों में और जो जमीन में, इंसान सोचता है क्या वाकई ऐसा है, हाँ वो तो वो भी जानता है। मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिहुम। जो तीन बैठ के खरगोशी करते हैं ना, जित बिल्कुल यानी विस्परिंग करते हैं, उनमें भी चौथा अल्लाह, पांच बैठते हैं तो छठा अल्लाह है, इससे कम या ज्यादा हो तो वो भी अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, हुआ मा हम ऐना मा कानू, इसी आयत के एंड में, कि वो जहां पे भी हैं उनके साथ है, यानी अपने इल्म के लिहाज से। आप चैट ग्रुप में जो चैटिंग कर रहे हैं, आप सोचते हैं किसी को नहीं पता, आप किसी के खिलाफ कोई प्लॉट कर रहे हैं, कोई झूठ गाढ़ रहे हैं, वो उसको भी जानता है, और अकेले में जो कर रहे हैं वो उसको भी जानता है। वो अर्श पे है मगर उसकी नजर फर्श पे है, अपने इल्म के एतबार से वो साथ है तुम्हारे, इसीलिए कयामत के दिन वो सब ले आएगा। और फिर उसका इल्म ऐसे नहीं कि सिर्फ जाहिर जाहिर को देखना, जैसे हम तो उस किसी किसी जाहिर जान सकते, बातिन का हमें क्या पता, वो उसका बातिन भी जानता है। फिर जो हो चुका माजी में इंसान उसको ही जानता है, कल जो होने वाला है उसको नहीं जानता, वो माजी भी जानता है, हाल भी और मुस्तकबिल भी। मुस्तकबिल उसके लिए मुस्तकबिल ऐसे नहीं है कि हमें, हमारे लिए तो मुस्तकबिल ऐसे है कि बिल्कुल हम नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है, फिर उसके लिए मुस्तकबिल ऐसे ही है, यानी बातिन भी ऐसे ही है जैसे जाहिर। और जो हो चुका उसको भी जानता है, जो हो रहा है उसको भी जानता, जो होना है उसको भी जानता, और जो नहीं हुआ वो उसको भी जानता कि अगर वो हो जाता तो कैसा होता या क्या होता, यानी जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना उसको भी जानता। आसमानों में जो कुछ हो रहा है वो सब जानता है, सितारे सैयारे दूसरे, और उनमें अल्लाह बेहतर जानता है कौन सी मखलूकात हैं, हर एक का इल्म है। जब एक पत्ते गिरने का भी इल्म है, और जब वो ये भी जानता है एक काली चूंटी काली रात में काले पत्थर पे चल रही है, अल्लाह ताला उसका भी हाल जानता है, और वो जो अल्लाह ताला को पुकारती है अल्लाह ताला उसकी भी आवाज़ को सुनता है, उसके भी हाल को जानता है, उसके अंदर जो वेन्स गुजर रही है ना उसका भी एक दिमाग है, उसकी भी एक जुबान है, उसके भी अंदर उसका सिस्टम चल रहा है, उसका मैदा है, उसके भी सांस है, उसकी भी एक्सक्रीशन है, वो अंडे दे रही है, एक मछली है वो समंदर में कहाँ कहाँ कितने ज़्यादा अंडे दे रही है, उससे क्या निकल रहा है, वो जो चीज़ निकलती है वो कहाँ कहाँ जा रही है, एक मछली को कौन सी दूसरी मछली ने खाना है और कौन सी खा रही है, और कौन सी अब पैदा होगी उसको कौन सी खाएगी, सब जानता है। एक माँ के पेट में क्या पल रहा है वो उसको जानता है। वाह तब इमा लदेहिम आसा कुल्ला शहीन आदा, उसने अहाता किया हुआ है जो भी उनके पास है, और गिन गिन के हर चीज को लिख रखा हुआ है उसने, गिन गिन के आदद के साथ गिनती के साथ हर चीज की गिनती उसके पास है। यानी कि उसको क्या पता इतनी मखलूकात हैं, जैसे कुछ ये समझते हैं कि हाँ जो हो जाता है वो तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन जो अभी नहीं हुआ वो उसको नहीं जानता। नहीं, वो ये भी जानता है कि अगर ये हो जाता तो कैसा होता, जैसे अल्लाह ताला ने सूरह नाम में फरमाया ना कि जब वो जहन्नुम के किनारे खड़े होंगे तो कहेंगे कि एक दफा अल्लाह हमें वापस भेज दे तो हम भी ईमान ले आएंगे और नहीं तकजीब करेंगे तेरी आयात की। तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह नाम आया 28 में, वलाउ रुद्दुल आदु लिमानु आनहु व इन्नहुम लकाज़िबून, अगर इनको वापस लौटाया जाए ना यही काम करेंगे। उसको पता है कि किसने क्या करना है अगर इसको वापस लौटाया जाए। सूरह अनफाल में आता है ना, वलाउ आलिम अल्लाह फीहिम खैरन ला अस्माहुम, अगर अल्लाह इनके अंदर खैर देखता तो इनको ज़रूर सुनवा देता, यानी अगर खैर होती ना इनके अंदर तो इनको खैर की बात सुनवा देता, इनके अपने अंदर खैर नहीं, यानी अल्लाह ताला को पता है कि किसके अंदर खैर है, किसको सुनवाया जाएगा तो ये हिदायत पे आ जाएगा, किसको नहीं, किसको सुनवाया जाए और उसने कुछ भी नहीं करना, उसके अंदर इतना शर है। इसीलिए जिसको हिदायत मिलती है अल्लाह ताला ने उसके अंदर कोई खैर देखी है, जानता है इसमें खैर है, तो उसको कुछ सुनवा देता है और वो अल्लाह की तरफ आ जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला की बनाई हुई तकदीर पे कोई सवाल नहीं कर सकता अगर उसको पता है कि अल्लाह ताला अलीम है, क्योंकि तकदीर क्या है, अल्लाह ताला का इल्मे साबिक है, अल्लाह ताला को पहले से इल्म है। हम जो राम से कह देते हैं ना उसका क्या कसूर है उसको हिदायत नहीं मिली, वो भी तो बेचारा, इन काफरों का क्या कसूर है इनको हिदायत नहीं मिली, अगर अल्लाह ने उनके अंदर खैर देखी होती तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दिखा देता, हिदायत का रास्ता सुझा देता, उनको भी सुनवा देता जिससे वो हिदायत पा लेते। आप देखें एक मिसाल सूरह लहब जो है, अब इसके अंदर ये शुरू की सूरतों में से है। अल्लाह ताला ने बता दिया कि अबू लहब जहन्नुम का ईंधन बनेगा और उसकी बीवी भी, और ये दोनों कई साल तक जिंदा रहे। अबू लहब तो हिजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर ली थी, उसके बाद फौत हुआ। बदर तक वो जिंदा था मगर वो फिर भी ईमान नहीं लाया। कम से कम यही कर सकता था, कुरान को झूठा साबित करने के लिए ईमान ले आता, मगर उसको ये नसीब नहीं हुई। और ये अल्लाह ताला का इल्म कामिल है ना, वो पहले से जानता था कि इसने ईमान नहीं लेकर आना, इसने कुफर के ऊपर मरना। वो जानता है कौन जन्नती है, वो जानता है कौन जहन्नमी, को जानता है कौन किस जमीन पे मरेगा और किस हाल में मरेगा। ये सब कुछ जानता है, इंसान नहीं जान सकता। वो तो ये भी नहीं जान सकता कि उसने अपनी उसकी जान कब तक कायम रहेगी, उसको मौत का बानी है। अपने बारे में भी नहीं जानता, किसी और का इल्म क्या रह गया फिर। उसको अपने ऊपर नहीं पता होता कि मेरे अंदर कौन सी बीमारी पल रही है। वो एक दिन पता चलता है, अच्छा तुम्हारे तो अब ये बीमारी फोर्थ स्टेज को पहुंच गई। वो तो जो अपना आप नहीं जानता, जिस वजूद को लेके जिस जिस्म को लेके वो घूम फिर रहा है, वो उसको नहीं जानता, तो किसी और चीज का क्या कहना। और अल्लाह ताला के बारे में आता है, अला यालमु मन खलक, क्या उसी को नहीं पता जिसने पैदा किया। इंसान बड़े उसे कहता ना कि हाँ मुझे पता है। अल्लाह अकबर, कि ये चीज मेरे लिए ठीक है कि नहीं, ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, ये आजकल चल नहीं सकते, ये क्या हुक्म आ गया अल्लाह ताला का, ये तो हो ही नहीं सकता, और बड़ी बातों पर एतराज करता है। क्या उसको नहीं पता होगा जिसने पैदा किया? उसको नहीं पता तुम किस चीज से गुजर रहे हो? उसको नहीं पता तुम्हारे दिल में क्या है? उसको नहीं पता कि तुम्हारे हालात क्या है? क्या उसको नहीं पता कि ये चीज होगी तो कैसा होगा? अल्लाह को क्वेश्चन करते हो। सूरह हदीद में आता है ना, जो भी मुसीबत आती है, चाहे वो जमीन में हो, जलजले हैं, जैसे जंगे हैं, कहत साली है, तूफान है, कोई भी ऐसी बलाएं, या फिर तुम्हारी अपनी जानों में कोई मुसीबत आती है, कोई बीमारी, कोई फकरो फका, कोई माली जानी नुकसान, कुछ भी होता है, उस सब एक किताब में ऑलरेडी लिखा हुआ है। और वो किताब में कब से लिखा हुआ है? इस जमीनों आसमान की पैदाइश से भी अल्लाह ताला ने 50,000 साल पहले लिखवा दिया हुआ था। तो हमें तो अब पता चलता है ना कब से लिखा हुआ है। ये है अल्लाह ताला का इल्म, और अल्लाह ताला का इल्म इंसानों के इल्म के मुकाबले में, अल्लाह ताला के इल्म की मिसाल देखें, जब खिजर और मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे कश्ती में, तो उतने में कश्ती के ऊपर एक चिड़िया आके बैठी जिसकी चोंच में पानी का एक कतरा था। तो खिजर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जो ये पानी का कतरा चिड़िया के मुंह में है, ये है वो इल्म जो मेरा तुम्हारा और सारी इंसानियत का है, और इसके मुकाबले में जो समंदर है, ये है वो इल्म जो अल्लाह ताला का। कोई निस्बत हो ही नहीं सकती। और इंसान के पास भी जो थोड़ा बहुत इल्म है ना, वो भी अल्लाह ताला का दिया हुआ है। अल्लाह ताला को किसी ने इल्म दिया नहीं है, वो ऐसा अलीम है, ये उसकी अपनी सिफत है, ये उसके साथ है, वो उसको सिखाने वाला कोई नहीं। जबकि इंसान को अल्लाह ताला ने सिखाया, अल्लाम आदम अलस्मा कुल्ला, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सारी चीज़ों के नाम सिखा दिए थे ना, वही नॉलेज है जो कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दे दिया था, उसी के ऑफशूट्स हैं जो आज इंसान जितनी भी उलूम की बातें करता है वो उसी से हैं, अल्लाह ताला ने दे दिया वह। इसी इब्ने तैमिया दुआ किया करते थे, या मुअल्लिम दाऊद अल्लिमनी, ए दाऊद अलैहिस्सलाम के मुअल्लिम मुझे भी इल्म दे दे, या मुफहिम सुलेमान फहिमनी, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझ देने वाले, फहम देने वाले मुझे भी फहम अता फरमा दे। तो अल्लाह ताला ही है देने वाला, जिसने सिखाया दाऊद अलैहिस्सलाम को, सुलेमान अलैहिस्सलाम को उलूम दिए, समझ दी, वो हमें भी इल्म दे सकता है, उससे इल्म मांगे। अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए फरमाया, कुर रब्बी जिदनी इल्मा, ए नबी आप कह दीजिए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाह मैं अस्अलुका इल्मन नाफियान, मुझे नफामंद इल्म अता फरमा। तो कभी ये ना सोचें कि मैं बस बहुत इल्म वाला और मेरे पास तो जितने इंटेलेक्ट है और मैंने तो PhD कर ली। हमें अल्लाह ताला के इस नाम को समझने के बाद ये बात यकीन के साथ अपने अंदर रासिक करनी चाहिए कि मेरा इल्म कुछ नहीं, और मेरे पास जो थोड़ा सा एक जर्रे से भी कम का इल्म है ना, वो भी अल्लाह ताला ने जो अता फरमा दिया। वला युहीतुना बिशैइ मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, हाता नहीं वो कर सकते उसके इल्म का, उसके इल्म में से कुछ चीज नहीं ले सकते, मगर जो अल्लाह ताला चाहे किसी को दे दे जितना इल्म, तो वो उसके पास है इल्म के खजाने, मेरा पास कोई इल्म नहीं है। तो फिर तकबुर किस बात का, फिर बड़ाई किस बात की, फिर शेखियां किस बात की? तो हम जाहिल हैं, अल्लाह ताला जो इल्म दे दे थोड़ा सा, बस उतना ही जानते हैं, वो भी उतनी सी चीज का, वो भी सिर्फ उसके जाहिर का। आप देख लें बड़े बड़े जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, मसलन एक मेडिकल डॉक्टर ही है, वो क्या एक चीज का इल्म जानता है? उसके अलावा लाखों अलूम है दुनिया में, ना वो इंजीनियरिंग जानता है, ना वो कुकिंग जानता है, ना वो गार्डनिंग जानता है, ना वो कोई और कंस्ट्रक्शन जानता है, वो कोई और चीज़, उसको सिर्फ इतना सा मेडिकल का इल्म है, और वो भी सिर्फ एक उज्व का, एक ऑर्गन का स्पेशलिस्ट वो हो सकता है, पूरी बॉडी का नहीं हो सकता। और फिर उस ऑर्गन में भी वो कहता है मैं स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन उसमें भी उसकी पूरी मुकम्मल रसाई नहीं है उसको इल्म की, वरना तो हर स्पेशलिस्ट उस बीमारी का इलाज बता देता, अगर उसका भी इल्म मुकम्मल नहीं है। तो इसलिए इस नाम से हम अल्लाह ताला के अपने लिए ये लेते हैं कि हम कभी इल्म का तकब्बुर ना रखें। दूसरे, इस नाम से हमने क्या सीखा कि हम अल्लाह ताला से हया करें, जो हर चीज़ को जानने वाला है, उससे हम कहीं छुप नहीं सकते। वह वो आलिम बिज़ात सुदूर, उस दिन वो सीनों के अंदर के भेद निकाल के बाहर, वो सीनों के अंदर को जानता है, और वो हुस्सिला माफी सुदूर, वो सीनों के अंदर के चीज़ें ला के बाहर निकाल देगा कयामत के दिन, क्योंकि वो सीनों के अंदर की चीज़ों को वो जानने वाला है, जो चीज़ अभी ख्याल हमारे दिल में आया भी नहीं ना, वो उसको भी जानता है, और जो दिल में बातें आ रही हैं, जो सोचें आ रही हैं, वो उनको भी जानते हैं। तो उसमें हम अल्लाह ताला से शर्माएं कि किस तरह की सोच मेरे अंदर आई, कोई गंदी सोच, कोई बेहयाई की सोच, कोई बुरी सोच, कोई कीने, कोई बोगस, कोई दुश्मनियों की, कोई नफरतों की सोच, उनमें ये याद रखें कि अल्लाह ताला तो जानता है ना, किसी और को नहीं पता मेरे दिल में क्या सोच उठी है, मगर वो जानता है कि ये मेरी नज़र उठी है तो क्या सोच लेके झुकी है। यालम खाइनतल आयुनी व मा तुख्फी सुदूर, वो आंखों की खयानत को भी जानता है, जो दिलों के अंदर छुपा हुआ है उसको भी जानता है। तो फिर हमें कितनी अल्लाह ताला से इसमें शर्म करनी चाहिए। और फिर तीसरी बात ये कि कभी ये ना सोचे हाँ मेरे ऊपर जो गुजर रही है वो क्या पता किसी को, अल्लाह ताला को पता है, और वो जानता है कि आपके दिल पे क्या गम का पहाड़ गुजरा, किस चीज़ से आप गुजरे। हम सोचते हैं कि कोई समझ नहीं सकता, वो समझ सकता है, वो जानता है और समझ सकता है, सिर्फ जानता नहीं है। फिर एक और बात, बास चीज़ें हम मुंह से बोलें भी तो हमसे सही तरह बयान नहीं होती कि किस तरह किसी को समझाएं, कैसे किसी को बताएं, वो उसको भी जानता है। इसी तरह हम आजकल जो भी कोशिशें कर रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि कब जब तक किसी को बताएं ना तो हासिल क्या, किसी को कैसे पता चलेगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अल अलीम देख रहा है, वो अल अलीम जानता है, बस उसका जानना ही काफ़ी है। और एक और बात जो हज़रत हसन बसरी अक्सर फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला हिल्मी का बाद इल्मी का वलकल हम्दु आला अफूवी का बाद कुदरतिक, ए अल्लाह तेरी तारीफ है कि तू इल्म के बावजूद, इल्म है तुझे, तुझे पता है जो सारा कुछ अल्लाह ताला के इल्म है, फिर भी तू दरगुजर कर देता, और कुदरत के बावजूद तू माफ कर देता। तो अल्लाह ताला तो हमारे सारे गुनाहों को जानता है, और हमारी सारी जितनी भी हम उल्टी सीधी बातें करते हैं जो हमारी जुबानों से निकलती हैं, हमें भूल गई हुई हैं, वो भूलता नहीं है, सब कुछ जानता है, फिर भी कितनी हमें अल्लाह ताला की कदरदानी करनी चाहिए और उसकी तारीफ करनी चाहिए कि अल्लाह तुझे पता है और फिर भी तू माफ कर देता है। हमें किसी का कुछ पता चल जाए ना तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारी ये बात है और पता है कि तुमने ऐसा किया। लेकिन देखिए सुभान अल्लाह, उस अल्लाह ताला की कितनी तारीफ है कि वो फिर भी इंसान को फौरन पकड़ता नहीं है, वो देखता है, वो जानता है और उसको पता है हमारे माजी का भी, हाल का भी और मुस्तकबिल का, फिर भी वो दरगुजर किए जाता है और किए जाता है और एक दफा नहीं बार बार दरगुजर करता है। और यही चीज हमें दरगुजर का सबक देती है कि हम भी लोगों से दरगुजर करें। याद रखें तीन आमाल ऐसे हैं जिनके अजर की अल्लाह ताला ने कोई हद बयान नहीं फरमाई है कि कितनी अल्लाह ताला उसका अजर देगा, उसकी कोई यानी उसका कोई बताया नहीं कि इतने ज्यादा तुम्हें इतना गुना अजर मिलेगा। एक नंबर वन सबर, सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने फरमा दी ना कि बेहिसाब अजर अल्लाह ताला देगा। दूसरा रोजे का, आपको पता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया रोजा मेरे लिए और मैं ही उसका अजर दूंगा जब बंदा मेरे पास आएगा। और तीसरा लोगों के साथ दसगुजस का मामला करना, फमन आफा व असला फ अजर हुआ अल्लाह, सूरह शूरा में अल्लाह ताला ने फरमाया ना जो माफ कर दे रहे इसलाह करे तो उसका अजर अल्लाह ताला के पास है। तो हमें ये सबक मिलता है कि जब अल्लाह ताला अपने इल्म के बावजूद दरगुजर करता है तो हम भी दरगुजर किया करें। शेख साले अल उसैमीन ने अपने उस्ताद शेख अब्दुलरहमान बिन नासिर असादी को ख्वाब में देखा, वो फौत हो गए थे, उनको ख्वाब में देखा, पूछा कि आपको अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा किस अमल ने फायदा दिया, फरमाया लोगों के साथ उसने सलूक करने और उनको फायदा पहुंचाने ने। और वाकई उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी बहुत बड़ी खूबी थी, हमेशा लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश किया करते थे और किसी से नफरत नहीं रखते थे, किसी के बारे में दिल में बुराई नहीं रखते थे, किसी ने उनके साथ बदसलूकी भी की होती थी तो उससे नीयत को साफ कर लेते थे, माफ कर देते थे। तो ये भी लोगों को फायदा पहुंचाना है कि उनकी जो चीजें उनको पकड़ ना लिया करें कि बस पकड़ के बैठ जाएं और फिर छोड़ना ही ना। अल्लाह ताला में इतने बड़े दिल अता फरमा कि हमें लोगों की बातें पता चल भी जाएं और हमारे सामने आ भी जाएं तो भी हम दरगुजर करते हैं। तो उनकी कितनी बड़ी ये खूबी थी कि उनको ख्वाब में ये आया कि मैं लोगों के साथ जो उनको फायदा पहुंचाता हूँ था और जो उनके साथ एहसान करता था, तो हम अब फायदा पहुंचाने वाले बने। और फायदा सिर्फ ये नहीं होता कि हम किसी के लिए कुछ मॉनेटरी फायदा ही करेंगे, यानी उसको कोई पैसे ही दे रहे हैं तो उसको फायदा किया, जब किसी को माफ कर देंगे, दरगुजर कर देंगे किसी से, कोई किसी ने कुछ उल्टा सीधा किया भी है तो बस जाने दें, बस अब उसको कुएं में फेंके बस, यानी बेपरवाह हो जाए उससे, भूलने की कोशिश करें उसको, ये भी बहुत बड़ा फायदा पहुंचाना है। और इस तरह और भी फायदे हैं जो आप दूसरों को पहुंचा सकते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना तुम मेरे से बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए नफा मंद हो, तो देखा करें मैं कैसे किसी के लिए फायदा मंद बन सकती हूँ, किस तरह से। हमें एक ही बस बात आती है कि हम बस लोगों को किसी को पैसे दे देंगे तो बस वो उसमें हम फायदा पहुंचा रहे हैं, नहीं, आप फायदा, ये भी फायदा है कि किसी तरह भी किसी के काम आ जाना, किसी तरह भी किसी का भला कर देना, किसी तरह भी किसी की तकलीफ को दूर कर देना, किसी तरह भी कोई मुश्किल के अंदर है उसकी मुश्किल आसान कर देना, किसी तरह किसी को अच्छा मशवरा दे देना, कोई अच्छी नसीहत की बात कर देना, कोई किसी वक्त गम में परेशानी में उसको तसल्ली दे देना, ये सारे फायदे हैं। किसी वक्त कोई बीमार है तो उसकी कोई इयादत कर लेना, ये भी उसको फायदा पहुंचाना है। आप बहुत तरह से लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर हम सोचें इस चीज के ऊपर कि मैं किस तरह फायदा पहुंचाऊं लोगों को, अपने आइडियाज लेकर आए इसमें, क्योंकि तो वाकई कई दफा हमारे सामने मौके होते हैं हमें याद ही नहीं रहता, हमें जहन में ही नहीं आता कि मैं कैसे फायदा मंद हो सकती, तो सोच लें कि मैंने फायदा मंद बनना है, कैसे मैं फायदा मंद बनूं। कहीं आपने कि मस्जिद में जूतियां पड़ी हुई आपने उठा के रैक में ही रख दी, आपने फायदा पहुंचाया ना किसी के लिए, आपने किसी का दरवाजा खोल दिया वो भी एक फायदा पहुंचाया ना, किसी को पानी की बोतल दे दी वो फायदा पहुंचाया ना। तो ये तो पानी देना तो खैर बहुत बड़ी नेकी है, इससे अलावा भी छोटी छोटी कई नेकियां हमारे सामने बिखरी होती हैं, लेकिन हम बस परवाह ही नहीं करते, हमें क्योंकि इतना शौक ही नहीं है कोई फायदा पहुंचाने का। किसी को कोई बात सिखा देना वो भी एक फायदा पहुंचाना है, वो किसी को कोई रेसिपी दे देना वो भी किसी को आपने फायदा पहुंचा दिया, किसी को कोई हुनर सिखा दिया वो भी फायदा पहुंचा दिया आपने किसी को। तो बहुत सारे तरीके हैं फायदा पहुंचाने के, बस ये सोच लें कि मैंने फायदा मंद बनना है, मेरी जात से बरकत हो, मेरी जात से खैर मिले लोगों को, मेरी जात बाय से खैर हो, मैं जहां जाऊं मैं बाय से खैर बनूं। इसको अपनी दुआओं में शामिल कर लें कि अल्लाह मुझे बरकत वाला बना दे, मुझे खैर वाला बना दे, मैं जिधर किधर भी हूं, जहां कहीं भी रहूं। ठीक है, आज का जिक्र सुबहान अजिल जबरूती वल मलकूती वल किबरियाई वल अजमती, ये छोटा सा जुमला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात क़याम शुरू किया और इतना लंबा रुकू किया, इतना लंबा कि उसकी मिकदार सूरतुल बकरा के बराबर थी, और इसमें यही कलिमात दोहराते रहे। सोचें फिर ये कितने अजीम कलिमात हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तू जिल जबरूत है, जबरूत वाला, ये अल्लाह ताला की सिफत है। अल जब्बार अल्लाह ताला का नाम है और हर नाम सिफत के साथ है, तो जब्बार के कई माने हैं, रोब वाला, दबदबे वाला, आजमत वाला, और ये भी इसका माना है दूसरा कि किसी की कमी को पूरा करने वाला। तो जैसे दो सजदों के दरमियान भी हम दुआ जब करते हैं तो उसमें एक ये भी आता है ना, वजबुरनी, अल्लाह मेरी मदद, मेरी मेरी कमी दूर कर दे, जोड़ने वाला, तो अपने बंदों के दिलों को भी जोड़ता है, और वो ऐसी आजमत और बुलंदी वाला है कि उससे ऊपर कोई शय नहीं। तो जो आमाल में हमारी कमी कोताही होती है, हम उसमें भी कहते हैं कि अल्लाह ताला वो कमी दूर कर दे। तो बुलंदी वाला, रोब वाला, आजमत वाला, कमियों को पूरी करने वाला, जोड़ने वाला, ये सब है ये इस लफ्ज में जबरूत, और अजमत का माना भी इसमें आया। और इसी वजह से कोई बंदा अपने आप को जब्बार ना कहलाए, तो ये अल्लाह ताला की सिफत है। और अल मलकूत, मुल्क वाला, ऐसी बादशाहत वाला जैसी बादशाहत किसी और की नहीं, बड़ी बादशाहत वाला, हर शय के ऊपर उसकी बादशाहत कायम है, क्योंकि हर चीज उसकी ममलूक है, उसी ने दी है। और अजमत वाला, किबरियाई वाला, तो इसमें सारे हैं। सुबहाना पाक है वो जो जिल जबरूत है, वल मलकूत है, वल किबरियाई वल अजमती, और अजमत वाला, किबरियाई, बड़ाई वाला है। तो ये भी अल्लाह ताला की तारीफ के बहुत ही प्यारे कलिमात हैं, इसलिए इसके साथ भी हम दुआ कर सकते हैं इसके बाद भी, यानी ये भी जिक्र है बहुत प्यारा। और कितना ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू में इस जिक्र को किया, इससे भी इस जिक्र की अजमत पता चलती है, ये कितना जबरदस्त जिक्र है। और दुआ आज की बहुत मुख्तसर सी दुआ है, सूरह मोमिनून आयत 118 में आई है, रब्बे फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे और मुझ पे रहम फरमा, क्योंकि तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला, सबसे बढ़ के रहम करने वाला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 100 दफ़ा दुआ किया करते थे मग़फ़िरत की, तो रब्बे रब्बे फिर व तुब अलैया, ये एक मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 बार फरमाया था, 100 बार पढ़ा था, तो सहाबी ने गिना, तो किस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार किया करते थे। तो हम कितने मोहताज हैं कि हम इस्तिग़फ़ार करते रहें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस बंदे के लिए जन्नत की बशारत हो जो क़यामत के दिन अपने नामा आमाल में कसरत से इस्तग़फ़ार पाए, तो उसके लिए जन्नत की बशारत है। तो अगर किसी के कोई गुनाह भी नहीं होते तो तब भी ये दर्जात की बुलंदी के लिए कि इंसान इस्तग़फ़ार करता रहे, तो इससे दर्जे बुलंद होते हैं। और इस दुआ में ख़ास तौर पर दो चीज़ें मांगी गई, एक बख्शिश कि अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, क्योंकि गुनाह निजासत है और गुनाहों के साथ तो जन्नत में नहीं जाया जा सकता, और दूसरी रहमत मांगी है कि अल्लाह मुझ पे रहम फरमा दे। ये भी ज़रूरी है क्योंकि जन्नत में कोई नहीं जा सकता जब तक कि अल्लाह ताला की रहमत ना हो, अल्लाह ताला की रहमत होगी तो कोई बंदा जन्नत में जा सकता है, सिर्फ अपने आमाल से नहीं जा सकता। तो उससे हम रहमत का सवाल करें कि अल्लाह मुझ पे अपनी रहमतों को नाजिल फरमा, क्योंकि हमें दुनिया में भी अल्लाह ताला की रहमतें चाहिए और आखरत में भी चाहिए। तो आप अल्लाह ताला से रहमत मांग रहे हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, जितने भी रहम करने वाले हैं, जितने भी मोहब्बतें करने वाले हैं, जितने भी ऐसे कोई भी ऐसी हस्ती है जो किसी के ऊपर रहम कर दे, उससे ज्यादा तू रहम करने वाला है, तो इसलिए हम तुझसे रहम मांगते हैं। तो अल्लाह ताला को उसकी खैरुर राहिमीन का वास्ता दिया है कि अल्लाह ताला तू तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, सबसे बेहतरीन है रहम करने वालों में, जितने भी रहम करते तू तो रहम कर दे मुझ पे। तो ये बहुत प्यारी छोटी सी दुआ है। इमाम इब्ने तैमिया फरमाते हैं कि जब भी मेरे ऊपर कोई मुश्किल मसला आ पड़ता है तो मैं लगभग 1000 मरतबा इस्तखबार करता हूँ और अल्लाह ताला उसका हल मेरे ऊपर वाजे कर देता है। तो जो मसलों के हल भी चाहता है वो भी इस्तिगफार करे। तो इस्तिगफार में बहुत सारी यानी इंसान के लिए बहुत सारी खैर छुपी हुई है। अल्लाह ताला हमें हमेशा झुकने वाला, तौबा और इस्तिगफार करने वाला रखे और हम सब की बख्शिश फरमा दे इस रमज़ान में। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।